सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती को नमन करते हुए और अब गोमठ सार जीव कांड का मंगलाचरण प्रारंभ होता है। सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनिंद वर्णे चंद मकलंकं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं गोच्छं। आयुष्मान भव्यात्माओं, गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ के अंदर हम सभी आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के माध्यम से जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का चिंतन कर रहे हैं। उसमें अब आप आएंगे गाथा नंबर 11 पर, यानी चतुर्थ गुण स्थान जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अर्थात 20 प्ररूपणाओं में सबसे पहली प्ररूपणा है गुणस्थान प्ररूपणा, और गुणस्थान के 14 भेद बताकर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणस्थान के लक्षण को आप जान चुके हैं। मिथ्यात् गुणस्थान, सासाधन गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। उसी अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान यानी जिसमें आज के क्षयोपशम सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविकाएं रहते हैं, उसका विशेष रूप से वर्णन आपको जानना है। दसवीं गाथा के माध्यम से आपने जाना कि अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन को मिलाकर दर्शन मोनी की 7 प्रकृतियां कही जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपशम से अपसमिक सम्यक दर्शन और इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन इन प्रकृतियों में सर्वघाती प्रकृति के सद्वस्था रूप उपशम से क्षय से क्षयोपशम से वेदक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, वेदक सम्यक दर्शन कहा जाता है। तो उसके मुख्य अर्थ को आपने जान लिया है कि यह सम्यक दर्शन भले ही व्रतों को नहीं होने देता, मतलब इस गुणस्थान वर्ती जीव को व्रत नहीं होते हैं, इसलिए अविरत इसका नाम है। और सम्यक दृष्टि माने इस गुणस्थान वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है और उसके व्रत नहीं होते हुए भी निचम कम्मक खमण हेदु नित्य ही कर्म क्षय का वह कारण होते हैं। यानी कि सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है कि जो नित्य ही कर्मों का क्षपण कराता है। तो जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर पर्यंत तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन किसी भी प्राणी को रह सकता है और नित्य ही वह कर्म की निद्रा का कारण होता है। इसमें थोड़ी सी बात आपको और जान लेनी है कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन में प्रतिपक्षी कर्मों के सद्भाव और असद्भाव के कारण बहुत बड़ा अंतर है। यानी औपशमिक में मैंने ये इन प्रकृतियों का उपशम रहता है और कारण मिलते ही वे कर्म प्रकृतियां हलन चलन को प्राप्त हो जाती हैं, तो जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है, द्वितीय गुण स्थान सासाधन को भी प्राप्त कर सकता है सम्यक्त की आसाधना से। सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिश्रित परिणाम हो जाए तो तृतीय गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकता है और चतुर्थ गुण स्थान में भी रह करके चल मलिन अगाढ़ दोषों से सहित होकर क्षयोपशम सम्यक दर्शन में रह सकता है, अथवा इन सातों प्रकृतियों का क्षय करके केवली सुख केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। यदि इन सातों कर्म प्रकृतियों का नाश कर देता है तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, और वो क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद पुनः छूटता नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए रहता ही है। जैसे राजा श्रेणिक को भगवान महावीर के समोसरण में क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो वह जीवन के अंतकाल तक, उसी जीवन के अंतकाल तक ही नहीं, हमेशा क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो समझो वो मोक्ष जाने तक कभी भी छूटेगा नहीं, और निश्चित रूप से मोक्ष को दिला देगा। तो ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन यदि प्राप्त हो जाए तो समझो बहुत ही अच्छी बात है, इन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। अब अगली गाथा में हम चलते हैं उसी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों की विशेष परिणामों की और विशेष व्यवस्था की बात को ये गाथा बतलाती है। सम्मा इट्ठी जीवो उवैट्ठम पवयणम तु सद्दहदि,
उवैट्ठम पवयणम तु सद्दहदि,
सद्दहदि असभावम,
सद्दहदि असभावम,
अजान मानो गुरु नियोगा,
अजान मानो गुरु नियोगा।
सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। सम्मा इट्ठि जीवो उवैट्ठम पवयणम तु सद्दहदि, सद्दहदि असभावम, अजान मानो गुरु नियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्टम प्रवचनम तु सद्ददाति, सद्ददात्य सद्भावम अज्ञायमानो गुरु नियोगा। हमारे पूर्वाचार्यों के मुख से, यानी जो परम वीतरागी गुरु हुआ करते थे, वे भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की वाणी को आधार बना करके इन गाथा सूत्रों का उच्चारण करते हैं। बड़े भावों के साथ इनका उच्चारण करने से शीघ्र ही याद होती हैं गाथाएं और स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो उनके रचने वाले, ग्रंथ रचने वाले आचार्यों के प्रति भी पूर्ण विनय भाव रखा जाता है, तब श्रुत का समावेश अच्छी तरह से होता है। आपको जानना है कि इसीलिए ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रारंभ में श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति करने का नियम बताया गया है। श्रुत भक्ति का मतलब है जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ के प्रति परम आदर भाव। आचार्य भक्ति का मतलब है उस ग्रंथ को रचने वाले आचार्य के प्रति परम श्रद्धा का स्रोत प्रवाहित करने के लिए आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है। वैसे आचार्य नेमी चंद्र स्वामी के द्वारा रची गई इस 11वीं गाथा को बहुत ही भक्ति के साथ पढ़कर और उसका अर्थ श्रवण कीजिएगा। सम्मा इट्ठि जीवो माने सम्यक दृष्टि जीव, उवैट्ठम पवयणम तु सद्दहदि माने जो उपदिष्ट है, किसके द्वारा, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट तत्व और पदार्थ हैं उनको प्रवचन शब्द से, प्रवचन शब्द से संबोधित किया है, प्रवचन शब्द की संज्ञा प्रदान की है। तू सद्दधाति यानी उस प्रवचन पर जो श्रद्धा करते हैं वह तो सम्यक दृष्टि है ही, सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट वचनों पर श्रद्धान करता है। और आगे की गाथा, आगे की लाइन, सद्दहदि असभावम अजान मानो गुरु नियोगा, किंतु नीचे की लाइन के अर्थ को आप समझना कि सर्वज्ञ भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन पर तो श्रद्धान करता ही है क्योंकि सम्यक दृष्टि है, किंतु अजान मानो गुरु नियोगा कोई अज्ञायमान गुरु के नियोग से, यानी भ्रांतिवश किसी अज्ञानता के कारण जिस गुरु से ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने अज्ञानतावश यदि कोई चीज गलत भी बता दी तो असभावम सद्दहदि, तब वह विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता है, असद्भाव का भी श्रद्धान कर लेता है तो भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि गुरु पर उसको श्रद्धान है। ये बहुत विशेष बात कही है कि स्वयं के अज्ञान वश अरिहंत देव का जो ऐसा ही उपदेश है, इस बात को ग्रहण कर समझ करके यदि कदाचित किसी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान भी करता है तो भी वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसने भगवान पर श्रद्धान किया है। और यदि गुरु के माध्यम से भी कोई अतत्व का श्रद्धान कर लेता है तो गुरु पर श्रद्धान होने के कारण वह सम्यक दृष्टि होता है। आपने अंजन चोर की तो खूब अच्छी कहानी सुनी, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम। जानते थे कि सेठ जी झूठ नहीं बोलेंगे और ये सच्ची बात कहेंगे, तो भी देखो उनके वचनों पर ही श्रद्धान करके अंजन चोर ने अंजन गुटका विद्या सिद्ध करने के बाद जो उसको चोरों ने पकड़ लिया था आकाश गामिनी विद्या सिद्ध करने में नमोकार मंत्र बताया था, लेकिन वह भी भूल गया, तो उसने कहा सेठ जी ने जो कहा है वह वचन पर प्रमाण है, आणम ताणम कुछ तो कहा था, और उसी से ही उसने आकाशगामी विद्या सिद्ध कर ली। तो ये क्या है, इसलिए निसंकित अंग में अंजन चोर को बताया, किसी चोर की बात नहीं करेंगे सम्यक दृष्टि लोग, लेकिन एक चोर ने भी यदि शंका नहीं की भगवान के वचनों पर तो उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। इसलिए और लोगों की बात ना कह करके और आचार्य सामंतवाद स्वामी ने निशंकित अंग के अंदर अंजन चोर का नाम ले लिया। तो ये क्यों लिया, इसीलिए कि यदि गुरु पर या भगवान के वचनों पर श्रद्धान है और किसी प्रकार से कोई गलती भी हो रही है तो भी वो श्रद्धानी होने के कारण सम्यक दृष्टि माना जाता है। लेकिन इसके साथ में एक गाथा और भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है, गाथा नंबर 12।
सुत्तादोतम सम्मम
दर्शिच्यन्तं जदान सदहदि
दर्शिच्यन्तं जदान सदहदि
सोचेवहवैमिच्छा इति जीवो तदो बहुधि
इति जीवो तदो बहुधि।
साथ गाथा पढ़ेंगे। सुत्तादोतम सम्मम दर्शिच्यन्तं जदान सदहदि सोचे वै मिच्छा इति जीवो ददो बहुधि। सुत्तात्तं सम्यक् दर्शयन्तं यदा न सद्ददाति स चैव भवति मिथ्या दृष्टिर्जीवस्तदा प्रवृत्ति। यानी षट्खंडागम जैसे सिद्धांत ग्रंथ के सार को बताते हुए नेमी चंद्राचार्य कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धान के कारण अज्ञायमान गुरु के नियोग से यदि अतत्व पर भी श्रद्धान कर लेता है तो सम्यक दृष्टि है। किंतु आगे देखिए, सुत्तादोतम सम्मम यदि किसी के द्वारा गणधर आदि के द्वारा कहे गए सूत्रों का आश्रय लेकर के किसी आचार्य आदि ने दर्शित चंतम कोई बात बता दी कि आपने अब तक जो श्रद्धान किया है वो गलत है, देखो सूत्र में ऐसा कहा है, हमारे भगवान ने ऐसा कहा है, तो जदाना सद्दादि उन सूत्र वचनों को भी देख करके यदि वह सम्यक दृष्टि जिसने अपने को सम्यक दृष्टि मान रखा है वह यदि श्रद्धान नहीं करता है तो सो जेव हवै मिच्छा इति जीवो तदो बहुधि। तदो बहुधि को ध्यान दे कि जैसे ही उस सूत्र के वचन को देखकर वो अपना श्रद्धान नहीं जमाता है उस पर, उसी समय से तथा प्रवृत्ति यानी उसी समय से वह जीव मिच्छा इति हवई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये गाथा इतनी अधिक महत्वपूर्ण है, इसको अपने मन के अंदर एकदम जमा लेनी चाहिए कि हमने कोई गलत धारणा अपने निमित्त से शास्त्र में नहीं समझने के निमित्त से किसी पक्षपाती के निमित्त से कोई गलत श्रद्धान बना लिया है, लेकिन आगम में वर्णित बात को यदि कोई दिखाता है, समझो ज्ञानमती माता जी जैसी ही आगम वाणी को अपने हृदय में सतत बसाने वाली वो आपको दिखाती हैं कि देखो इस ग्रंथ में लिखा है पूर्वाचार्यों ने हमारे ऐसा कहा है। तुरंत उस सिद्धांत को बदलना चाहिए। हम गलत हो सकते हैं, हमारी निज वाणी गलत हो सकती है, लेकिन जिन वाणी गलत नहीं हो सकती, ऐसा ये गाथा बताती है। और यदि नहीं माने, अपने पक्ष को ही रखा, एकांत पक्षी बन गए, तो उसी समय से हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए महानुभाव, चतुर्थ गुण स्थान में भी अपने श्रद्धान को दृढ़ रखना, और आपके प्रांत में या आपके मन के अंदर कोई धारणा हो सकती है, लेकिन जिनागम की धारणा को मन के अंदर बिठा लेना, ताकि आपके सम्यक्त में मलिनता ना आने पाए, आपका सम्यक्त छूटने ना पाए। इस बात को बताया गया कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हुए भी आप क्षयोत्सम सम्यक दर्शन के अंदर दृढ़ता ऐसी प्राप्त कर लें, आने वाले काल में कभी हमें भगवान तीर्थंकर का पादमूल मिले, तो हम उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम से जो औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया, आप उसके उसका क्षय करके क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाएं। समझ गए? हाँ, ऐसे गुरु वचनों पर और जिनेन्द्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करते हुए अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाना। अब देखो, ये प्रकरण समाप्त हुआ। ये है गोमठ सार, जीव कांड सार की बात। आज मैंने आपको दो गाथाएं इसलिए बताई कि दोनों का संबंध एक में जुड़ा है।